सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं फरहत नाज और मेरे साथ हैं शेफाली सिंह। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, इसके अलावा महानगरों की खबरों का रुख करेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरूआत करते हैं। नमस्कार शेफाली।
नमस्कार फरहत एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज and the Akashvani network. Well, listeners, I hope you are enjoying your morning. And with that, let's start with our program, Aaj Savere, with the latest in national and international news, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is 18th of September. So, Farhat, let's begin with the headlines first.
जी शिफाली, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जम्मू कश्मीर चुनावों से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में पहली बार विधानसभा के पहले चरण में वोट हो रहे हैं। 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 23 लाख मतदाता 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। 24 विधानसभा क्षेत्रों में से जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों में 8 विधानसभा और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 16 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मतदान के दौरान व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल हैं। वहीं हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि इनमें 930 पुरुष और 101 महिला उम्मीदवार हैं। इस बार 462 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 421 पुरुष और 41 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर में रहेंगी। वे जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति छात्रों के लिए 600 बिस्तरों वाले नए अरावली छात्रावास का भी उद्घाटन करेंगी। दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कुल 1361 डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति कल मध्य प्रदेश के उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी और इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क परियोजना की आधारशिला रखेंगी।
Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to the US from 21st to 23rd of this month. He will take part in the 4th Quad Leaders Summit in Wilmington, Delaware on 21st September. Following the request by the US to host this year's summit, India has agreed to host the next Quad Summit in 2025. External Affairs Ministry said the leaders at the summit will review the progress achieved by the Quad over the last 1 year. They will set the agenda for the year ahead to assist the countries of the Indo-Pacific region in meeting their development goals and aspirations. Mr. Modi will address the summit of the future at the UN General Assembly in New York on 23rd of this month. The theme of the summit is Multilateral Solutions for a Better Tomorrow. On the sidelines of the summit, Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with various world leaders and discuss issues of mutual interest. The Prime Minister will address a gathering of the Indian community in New York.
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने कल शाम दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश किया। उन्हें दिन में पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उधर भाजपा ने कहा है कि सिर्फ चेहरा बदल देने से पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार का जवाब देना होगा।
The centre has advised the leading edible oil associations to ensure that the maximum retail price is maintained till there is availability of edible oil stocks imported at nil and 12.5% of basic customs duty. Secretary, Department of Food and Public Distribution, DFPD, Sanjeev Chopra, chaired a meeting with the representatives from Solvent Extraction Association of India, Indian Vegetable Oil Producers Association and Soybean Oil Producers Association in New Delhi yesterday to discuss the pricing strategy. The government has increased the basic customs duty on various edible oils to support domestic oilseed prices. Effective from 14 September, the basic customs duty on crude soybean oil, crude palm oil and crude sunflower oil has been raised from nil to 20%, making the effective duty on crude oils to 27.5%. Additionally, the basic customs duty on refined palm oil, refined sunflower oil and refined soybean oil has been increased from 12.5% to 32.5%, making the effective duty on refined oils as 35.75%.
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 100 दिनों में केंद्र सरकार द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए हैं जो समाज के हर वर्ग में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। कल शाम दूरदर्शन के साथ एक साक्षात्कार में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान उपलब्ध कराए जाएंगे और 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये का मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार सृजन की सुविधा के लिए रोजगार से जुड़ी पहल योजना शुरू की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है और देश में प्रेस की स्वतंत्रता की काफी अहमियत है।
इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू एंड डिफेंस मिनिस्टर योआव गालंट हेल्ड अ सिक्योरिटी असेसमेंट मीटिंग एट द हाकिरिया मिलिट्री बेस इन तेल अवीव आफ्टर डेडली पेजर एक्सप्लोशंस रैटल्ड लेबनान यस्टरडे। ऑन द अदर हैंड हिज़्बुल्लाह हैज़ सेड इट इज कंडक्टिंग सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस टू आइडेंटिफाई द रीजंस बिहाइंड दीज एक्सप्लोशंस। इन अ सेपरेट स्टेटमेंट द ग्रुप ब्लेम्ड इजरायल फॉर द अटैक्स एंड वाउड टू रिटेलिएट। Israel has not claimed responsibility for the incidents. Lebanese Health Ministry said in the pager explosions yesterday, at least 8 people were killed and more than 2,800 were injured, including Hezbollah members. According to Iranian media, Iran's ambassador to Lebanon, Mujtaba Amani, was also injured in one of the blasts. Citing concerns of a potential escalation, local authorities in northern Israel have asked residents to remain near shelters and have reinforced safe rooms. The United Nations has said pager explosions across Lebanon marked an extremely concerning escalation. UN Special Coordinator for Lebanon, Jeanine Hennis-Plasquette, urged all concerned actors to refrain from any further action which could trigger a wider conflagration that nobody can afford. Hennis-Plasquette underlined the urgency of restoring calm and calls on all concerned actors to prioritize stability as paramount. The development comes as US officials try to de-escalate tensions between Israel and Hezbollah and could derail US efforts to prevent Iran from retaliating against Israel for the July bombing in Tehran. Lebanon's health ministry put hospitals across the country on maximum alert and instructed citizens to distance themselves from wireless communication devices. Hezbollah maintains its own communication network separate from the rest of Lebanon. And Meta, the parent company of Facebook, Instagram, WhatsApp and Threads, has announced a global ban on various Russian state-owned media networks. Meta accuses these networks of using deceptive tactics to conduct covert influence operations online. As per reports, Meta is expanding its enforcement efforts against Russian state media outlets, and Rossiya, Zhengodnaya, RT and other related entities are now banned from its platforms. Meanwhile, Kremlin has strongly criticized the ban. Russian government spokesman Dmitry Peskov accused Meta of selective actions against Russian media, and the tech company is discrediting itself with these actions.
और शिफाली, अगर बात की जाए एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की, तो भारत ने यह खिताब जीत लिया है। कल फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। चौथे क्वार्टर फाइनल में भारत की ओर से जुगराज सिंह ने शानदार गोल किया। इस टूर्नामेंट में भारत अपने सभी मैचों में अजय रहा है। इस प्रतियोगिता में चीन ने रजत और पाकिस्तान ने दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बाद अब रुख कर लेते हैं महानगरों का। तो शेफाली, सबसे पहले क्या है आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में?
जी फरहत, शुरुआत करते हैं चेन्नई से। द इंडियन कोस्ट गार्ड डिटेन्ड 3 श्रीलंकन नेशनल्स फॉर ट्रेसपसिंग इन टू द कंट्रीज टेरिटोरियल वाटर्स ऑन मंडे नाइट। इन्वेस्टिगेशन हैव रिवील्ड दैट 3 मेन ट्रेसपास्ड इन टू द इंडियन वाटर्स टू स्मगल सम आइटम्स टू देयर कंट्री व्हेन द इंडियन कोस्ट गार्ड पेट्रोल शिप फाउंड देम। दे वर डिटेन्ड अलॉन्ग विद देयर बोट, ब्रॉट to Mandapam and handed over to Marine Police for legal proceedings. Police said that they were assigned to collect the contrabands and take them to Sri Lanka. In another news, at least 4.5 lakh new armed forces pensions and family pensioners were added to the centre's one rank and one pension scheme, which was revised on July 1. The Controller of Central Defence Accounts, T. Jayaseelan, said that as per the scheme, uniform pension will be paid to defence personnel retiring in the same rank with the same length of service, regardless of their retirement date. He also said that their pension would be refixed once every 5 years and as per the plan. Arrears as per under the revised scheme are being paid in installments. In all, more than 25 lakh armed forces, pensioners or family pensioners benefit from the one rank, one pension scheme. And now listeners, news from Bengaluru. University of Agricultural Sciences in Bengaluru is organizing Krishi Mela or the Farmers Fair from November 14th to 17th, where it will release 4 new hybrid varieties of crops and 19 new technologies to help the farmers. The maize hybrid variety, developed by its promises a 14.20% higher yield, is resistant to leaf blight and downy mildew disease and has attractive orange color seeds that will fetch higher prices for the farmers. It is also releasing the cowpea variety with a yield of 13 to 14 quintals per hectare. It is resistant to dry root rot, bacterial leaf blight and viral disease. The third variety it is going to release is the sunflower hybrid, which can give 21% higher seed yield and 26% higher oil yield. The fourth is the Bajra Napier hybrid that has recorded a 14% higher green fodder yield with higher leaf stem ratio, better crude protein yield and better nutritional quality. The 9 technologies developed by the university are pertaining to crop improvement, crop production, protection and agricultural engineering. And now news from Hyderabad. In Hyderabad, about 1 lakh Ganesh idols in varying hues and sizes were immersed in lakes following the conclusion of Ganesh Chaturthi festivities yesterday. The capital city of Telangana was in the grip of festive spirit as organizers of Ganesh pandals hit the streets in motor vehicles for the immersion of the idols, dancing to religious songs and drum beats. Officials informed that over 1 lakh idols were immersed in lakes and ponds, including those set up for immersion by authorities in the Greater Hyderabad Municipal Corporation limits. The Hussain Sagar Lake in the heart of the city witnessed thousands of footfalls as vehicles carrying Vinayaka idols queued up for immersion. The Khairatabad 70-foot tall Mahaganesh idol was immersed in the Hussain Sagar yesterday afternoon after it was taken out in a Shobha Yatra. The Laddu Prasadam at the famous Balapur Ganesh Pandal was auctioned for 30 lakh and 1,000 rupees. And now, dear listeners, for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, let's move over to Farhat.
जी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। जनजातीय संस्कृति, व्यंजन, वाणिज्य और शिल्प कौशल की भावना का उत्सव आदि बाजार नई दिल्ली स्थित आगा खां हॉल में उत्साहपूर्वक चल रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित बाजार का कल तीसरा दिन था और यहां देश के विभिन्न हिस्सों से जनजातीय हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े और आभूषणों की प्रदर्शनी और बिक्री हो रही है। वहीं दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने कल राजभाषा सम्मान सप्ताह के शुभारंभ समारोह का आयोजन किया। दिल्ली की महापौर डॉ शैली ओब्रायन ने अवसर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना अपना सृजनात्मक सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। डॉ शैली ने हिंदी को कामकाज और व्यवहार की भाषा बनाने तथा भाषा के सृजनात्मक रूप से प्रयोग करने का भी आग्रह किया। वहीं इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। और अब रुख कर लेते हैं मुंबई का। महाराष्ट्र में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का कल अनंत चतुर्दशी पर समापन हो गया। पूरे राज्य में भव्य विसर्जन जुलूस निकाले गए। सुबह विसर्जन पूजा और आरती शुरू हुई। मुंबई में रात 9 बजे तक 1000 से अधिक सार्वजनिक गणपति मूर्तियों सहित लगभग 19000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार बाजार में सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को यांत्रिक रूप से बढ़ाने के किसी भी प्रयास पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है। अगले महीने दुर्गा पूजा है और हाल ही में हुई बारिश से बिचौलियों को कीमतें बढ़ाने का मौका मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने इस मामले पर चर्चा के लिए मंगलवार को राज्य सचिवालय नवन्ना में एक बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री और सचिव, व्यापारी संघों के प्रतिनिधि, कोल्ड स्टोरेज के मालिक उपस्थित थे। राज्य सरकार ने इस वर्ष की पहली छमाही में महंगाई रोकने के लिए टास्क फोर्स भी बनाई थी। इसमें इस टास्क फोर्स के सदस्य भी मौजूद रहे। और अब महानगरों के समाचारों के बाद रुक कर लेते हैं महानगरों के मौसम का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो आज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। शहर में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई की बात करें तो वहां पर भी बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
Yes, Farhat, and now let's have a look at the weather of our southern cities. Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और शेफाली, हम लोगों ने बात तो कर ली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ साथ मौसम की भी, तो अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज ही के दिन 1986 में मुंबई से पहली बार महिला चालकों ने जेट विमान उड़ाया था।
बिल्कुल, और फरहत, आज के दिन का सिग्निफिकेंस बहुत है हमारे लिए, बिकॉज टुडे वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड बैम्बू डे। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन सितंबर 18th टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैम्बू एंड प्रमोट इट्स सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं फरहत, बैम्बू कई चीजों में यूज आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेजेस, हर बैम्बू से वाटर पाइप्स भी बनते हैं, कंटेनर्स बनते हैं, उनके फाइबर से टेक्सटाइल्स बनते हैं।
जी बिल्कुल, हथकरघा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बैम्बू का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत प्यारी प्यारी कुर्सियों को बनाने के लिए, मेज को बनाने के लिए, जिसको आप एक शोपीस के तौर पर अपने घर में सजा सकते हैं।
बिल्कुल, सो इट हैज अ ग्रेट हैंडीक्राफ्ट वैल्यू एज वेल। और तो और इतना ही नहीं लिसनर्स, आज है इंटरनेशनल इक्वल पे डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 18। इट रिप्रेजेंट्स द लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। इट फर्दर बिल्ड्स ऑन द यूनाइटेड नेशंस कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स एंड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये काफी इंस्पायरिंग डे है फरहत।
और अब आगे बढ़े तो 1967 की बात कर लेते हैं। नागालैंड ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था आज ही के दिन, और 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ ने मध्यम दूरी के मिसाइल को हटाने के लिए हस्ताक्षर किए थे।
Going a little back, in 1934, General Meeting of the League of Nations adopted a resolution on the admission of the USSR into the League and the inclusion of its representative to its board as a permanent member.
सन 2007 में कनाडा में 1960 के दशक में जीवाश्म की खोज से तहलका मचाने वाले भारतीय जियोलॉजिस्ट जीबी मिश्रा को विशेष सम्मान से नवाजा गया।
In 1948, Operation Polo was terminated. Operation Polo was the name used to refer to the Hyderabad police action, which was essentially a military operation under which the Indian Armed Forces encroached on the state of Hyderabad and defeated the Nizam, obtaining the state of Hyderabad for the Indian Union. On this day in 1948, Operation Polo was terminated after the Indian Army accepted the surrender of the Nizam of Hyderabad's army.
सन 2009 में आज ही के दिन भारत ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी एक और हवाई पट्टी खोली।
And in the year 1959, Vanguard 3 was launched on this day by a Vanguard rocket from the eastern test range of the Atlantic Missile Range at Cape Canaveral into a geocentric orbit. The objectives of the flight were to measure the Earth's magnetic field, the solar X-ray radiation, and its effects on the Earth's atmosphere, the near-Earth micrometeoroid environment, and the drag effects and density of the upper atmosphere.
और अब आइए इतिहास के बाद हम याद कर लेते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हास्य कवि की, जो इसमें एक नाम काका हाथरसी का भी है। उनका एक व्यंग्य है, अगर ले लिया कर्ज कुछ क्या है इसमें हर्ज, यदि पहचानोगे उसे मांगे पिछला कर्ज। काका हाथरसी को हिंदी हास्य व्यंग्य कविताओं का पर्याय माना जाता है। काका हाथरसी की शैली की छाप उनकी पीढ़ी के अन्य कवियों पर तो पड़ी, बल्कि वर्तमान में भी अनेक लेखक और व्यंग्य कवि काका की रचनाओं की शैली अपनाकर लाखों श्रोताओं और पाठकों का मनोरंजन कर रहे हैं। उनकी रचनाएं समाज में व्याप्त दोषों, कुरीतियों, भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुशासन की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करती है। और उनकी एक और व्यंग्य है, अंग्रेजी से प्यार है हिंदी से परहेज, ऊपर से है इंडियन भीतर से है अंग्रेज। तो भले ही काका हाथरसी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हास्य कविताएं जिन्हें वे फुलझड़िया कहा करते थे सदैव हमें गुदगुदाती रहेंगी।
जी फरद, एंड डियर लिसनर्स, टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रैंक मॉर्गन, एन अमेरिकन कैरेक्टर एक्टर। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज अपियरेंसेज इन फिल्म स्टार्टिंग इन द साइलेंट एरा इन 1916 एंड देन न्यूमरस साउंड फिल्म थ्रू आउट द 1930s एंड 40s विद अ करियर स्पैनिंग 35 ईयर्स, विथ हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड परफॉर्मेंस बींग द टाइटल रोल ऑफ द विजर्ड इन द 1939 मूवी द विजर्ड ऑफ ऑज। सो लेट्स लिसन टू अ सॉन्ग फ्रॉम दैट फेमस मूवी।
And a couple of naughty dogs. That's how the crickets tickle day in Merryland.
And dear listeners, today is also the death anniversary of Jimi Hendrix, an American guitarist, songwriter and singer. He is widely regarded as the greatest guitarist in the history of popular music and one of the most influential musicians of the 20th century. He was inspired by American rock and roll and electric blues. So let's listen to a song from his album, The Jimi Hendrix Experience. The song is All Along the Watchtower.
There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief.
और अब हम याद कर रहे हैं हिंदी साहित्य में कथाकार, गीतकार और एक समीक्षक के रूप में विशेष तौर पर जाने जाने वाले श्रीकांत वर्मा को। राजनीति से भी ये जुड़े रहे और 1976 में राज्यसभा में निर्वाचित हुए। श्रीकांत वर्मा दिल्ली में पत्रकारिता से भी जुड़े। वर्ष 1965 से 1977 तक उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से निकलने वाली पत्रिका दिनमान में संवाददाता की हैसियत से कार्य किया। श्रीकांत वर्मा भूतपूर्व प्रधानमंत्री के काफी करीबी रहे। श्रीकांत वर्मा को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था।
Today is the death anniversary of Catherine Ann Porter, an American journalist, essayist, short story writer, novelist, poet, and political activist. Her 1962 novel, Ship of Fools, was the best-selling novel in America that year, but her short stories received much more critical acclaim. In 1966, she was awarded the Pulitzer Prize for Fiction and the U.S. National Book Award for the Collected Stories of Catherine Ann Porter.
वहीं अब हम याद कर रहे हैं भगवान दास को। वे विभिन्न भाषाओं के प्रकांड पंडित, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और शिक्षा शास्त्री के रूप में देश की भाषा संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। 23 से 24 वर्ष की आयु में उन्होंने साइंस ऑफ पीस और साइंस ऑफ इमोशंस नामक पुस्तकों की रचना की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार किया, तो डॉक्टर भगवान दास ने उनके साथ मिलकर काशी हिन्दू विद्यापीठ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूर्व में स्थापित सेंट्रल हिन्दू कॉलेज का उसमें विलय किया। डॉ भगवान दास काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्य ही नहीं, उनके प्रथम कुलपति भी बने।
Dear listeners, today is also the death anniversary of William Hazlitt, an English essayist, drama and literary critic, painter, social commentator and philosopher. I would say a pretty creative man. He is now considered one of the greatest critics and essayists in the history of the English language, placed in the company of Samuel Johnson and George Orwell. He is also acknowledged as the finest art critic of his age. His friends are now a part of the 19th century literary canon, including Charles and Mary Lamb, Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth and John Keats.
वहीं हिंदी सिनेमा के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले असित सेन को आज हम याद कर रहे हैं। उन्होंने चार दशक तक बॉलीवुड पर चरित्र अभिनेता और हास्य कलाकार के रूप में अपनी खास पहचान बनाकर दर्शकों को अपनी अदाओं से लोटपोट किया, तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म का ये डायलॉग।
क्या कष्ट है?
मैं तो आपका कष्ट दूर करने आया हूँ। वो आपका मोटू मैनेजर है ना, तोंदू मल, वो महाचातुर भी आदमी है। हाँ, आप उसको फौरन लात मार के निकाल दीजिए और मुझे गले से लगा दीजिए।
बड़े आया है गले से लगने वाला। अबे तोंदू मल के सामने ही तोंदू मल की पोल फोड़ता, जा निकल यहाँ से।
आप ही तोंदू मल हैं? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, नहीं तो मैं आपको ही मस्का लगाता।
मस्का? मस्के से क्या होगा?
आजकल की दुनिया में मस्के से क्या नहीं होता, ये दुनिया मस्के की है। कहिए मैं आपको मस्का कहाँ लगाऊं?
वाह बेटा, तू तो मेरा ही गुरु निकला है।
तो करिए मेरी सेवा, अब मालिक आलिए नौकरी दिलाइए।
नौकरी?
हाँ,
नौकरी तो नहीं मिलेगी।
असित सेन ने 200 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में हास्य और चरित्र अभिनेता का किरदार निभाकर अपने अभिनय की अलग पहचान बनाई। असित सेन ने बांग्ला फिल्म अमानुष और आनंद आश्रम सहित अनुसंधान में भी काम किया। असित सेन ने 200 से अधिक फिल्में की, जिनमें 1963 में बनी फिल्म चांद और सूरज, 1965 में भूत बंगला, 1967 में नौनिहाल और 1968 में ब्रह्मचारी फिल्म शामिल रहीं।
And dear listeners, today is the birth anniversary of D.D. Ramone, an American musician. He was the bassist and a founding member of the punk rock band The Ramones. Throughout the band's existence, he was the most prolific lyricist and composer, writing many of their best-known songs such as 53rd and 3rd, Chinese Rock, Commando, Rockaway Beach, Poison Heart and Bonzo Goes to Bitburg, also known as My Brain is Hanging Upside Down. The latter won the New York Music Award for Best Independent Single of the Year in 1986, while Animal Boy, which the song is from, won for Best Album. So let's listen to the song Poison Heart.
Thought this one would survive. Helpless child, doing a walk and drunk.
और आज ही के दिन हमें अलविदा कहा था मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवाजी सावंत ने। इन्होंने लेखन की शुरुआत प्रारंभिक कविता से की किंतु परिणति गद्य लेखन में की। वर्षों के चिंतन मनन के उपरांत 27 वर्ष की अवस्था में प्रथम मराठी उपन्यास मृत्युंजय का प्रकाशन हुआ। ये उपन्यास उनकी लोकप्रियता का प्रतिमान बना। इसका अनुवाद अंग्रेजी और हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला आदि अनेक भाषाओं में हो चुका है। छावा मूल मराठी में 1989 के अतिरिक्त मृत्युंजय और छावा की कथा वस्तु को ही लेकर दो नाटकों की रचना हुई। अन्य लोकप्रिय कृतियां हैं लड़हत, शालाका साज, अशी मने असी नमूने, मोरवला। अभी हाल ही में युग पुरुष श्रीकृष्ण के जीवन पर केंद्रित उनका एक बृहत उपन्यास युगंधर प्रकाशित हुआ। उनके उपन्यास मृत्युंजय, छावा, युगंधर और नाटक संघर्ष के हिन्दी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है।
The listeners, today is also the birth anniversary of Samuel Johnson, often called Dr. Johnson, an English writer who made lasting contributions as a poet, playwright, essayist, moralist, literary critic, sermonist, biographer, editor and lexicographer. The Oxford Dictionary of National Biography calls him arguably the most distinguished man of letters in English history. His early works include Life of Mr. Richard Savage, the poems London and the Vanity of Human Wishes, and the play Irene. After 9 years' effort, Johnson's A Dictionary of the English Language appeared in 1755 and was acclaimed as one of the greatest single achievements of scholarship. Near the end of his life came a massive, influential Lives of the Most Eminent English Poets of the 17th and 18th centuries, one of his most important works.
और आज हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्मदिन है। वे एक ऐसी मंझी हुई अदाकारा हैं जो हर अभिनय के अनुरूप उसी सांचे में ढल जाती हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में तरह तरह के रोल अदा किए। शबाना आजमी ने 1973 में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी श्याम बेनेगल की अंकुर।
She mostly worked in independent and neorealist parallel cinema, though her work extended to mainstream films as well as a number of international projects. Azmi is known for her portrayal of distinctive, often unconventional female characters across several genres.
Ji bilkul, aur Arth, Khandhar aur Paar jaisi filmon ke liye unke abhinay ko rashtriya puraskar se bhi sammanit kiya ja chuka hai. To aaiye sun lete hain Arth film se unka ye khoobsurat sa geet, Tum jo itna muskura rahe ho.
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो क्या गम।
इसके अलावा फिल्म मासूम में उनके निभाए गए किरदार को आज भी लोग काफी याद करते हैं।
Also, she has participated in many stage plays. Notable among them include M.S. Sathya's Safed Kundali, based on the Caucasian Chalk Circle, and Firoz Abbas Khan's Tumhari Amrita, which ran for 5 years. Some of her notable films are Shyam Benegal's Nishan, Junoon, Sushma, and Antanad, Satyajit Ray's Shatranj Ke Khilari, Mrinal Sen's Khandar, Genesis, Ek Din Achanak, and many more.
इसके अलावा शबाना आजमी ने 1986 में आई फिल्म अंजुमन के गीतों में अपनी आवाज दी। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत। इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।
हर एक मोड़ पे संभल के